हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रीति और राम गोपाल जी और परिवार का, जिन्होंने अपने निवास स्थान पे भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम माधुर्य रस के भंडार भगवान जो से आनंद बिखरता रहता है, प्रेम भगवान बिखेरते रहते हैं, उनको अपने घर में आज जन्म उत्सव का आयोजन किया है। इस परिवार का धन्यवाद करते हैं और यहाँ प्रचार करने वाली नित्य किशोरी नंदिता जिन्होंने यहाँ इस आयोजन में अन्य भक्तों के संग में ये आयोजन किया है, उसका भी धन्यवाद करते हैं। तो लोग कभी पूछ सकते हैं कि जन्माष्टमी तो अभी 9-10 तारीख को है, तो आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का क्या कारण? एक बार श्री प्रभुपाद जी जन्माष्टमी 2 दिन के बाद थी, तो वहां से कहीं जा रहे थे तो भक्तों ने कहा आप रुक जाइए, 2 दिन के बाद जन्माष्टमी है, ये उत्सव मनाकर फिर जाइएगा। प्रभुपाद ने कहा 2 दिन के बाद जन्माष्टमी है? भगवान का रोज जन्म होता है, हर रोज भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी लोक में प्रकट हो रहे हैं। भगवान की लीला नित्य है, ऐसे नहीं है कि एक बार ही भगवान अवतार लेते हैं। हमारे इस छोटे से ब्रह्मांड में, इस संसार में भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, लेकिन ऐसे कोटि कोटि और ब्रह्मांड हैं। कोटि का मतलब 100 मिलियन थाउजेंड्स, ऐसे और ब्रह्मांड है। जैसे मस्टर्ड सीड आपकी मुट्ठी में कितने आते हैं गिन सकते हो, या रेती समुद्र के किनारे में ऐसे बच्चा मुट्ठी भरेगी कितने रेती के कण है पता लगता है? नहीं लगता है ना। इससे ज्यादा ब्रह्मांड है हमारा ये ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको बनाया है 4 माथे वाले ब्रह्मा ने, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो ऐसे किसी न किसी लोक में भगवान का अवतार नित्य होता रहता है। कैसे? जैसे सूर्य रोज उगता है, अपने यहां सूर्य रोज उगता है ना, एक दिन तो नहीं है सूर्य उगने का, सूर्य तो रोज उगता है और रोज शाम को सूर्य अस्त हो जाता है। तो जैसे सूर्य उगता है तो कोई नहीं कहता है कि सूर्य का जन्म हुआ, जैसे सूर्य अस्त होता है तो कोई नहीं कहता है कि सूर्य मर गया, क्योंकि कल सूर्य उगेगा, इसलिए कोई नहीं कहता है कि सूर्य मर गया, क्यों भाई ठीक है ना। आपको आश्चर्य होगा, साधु संतों की वर्षी मनाई जाती है, उनका डिसअपीयरेंस डे, उनका तिरोभाव तिथि मनाई जाती है ना। कल नहीं परसों, कल एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, एकादशी जिसके पालन करने से पुत्र प्राप्ति होती है, विशेष रूप से उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और उसके दूसरे दिन मतलब कल नहीं परसों, डे आफ्टर टुमारो, रूप गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे है, ब्रह्मानंद भक्त का डिसअपीयरेंस डे है। आपको आश्चर्य ये लगेगा कि जन्माष्टमी तो मनाते हैं लेकिन कृष्ण का डिसअपीयरेंस डे कभी नहीं मनाया, राम का डिसअपीयरेंस डे कभी नहीं मनाया। मनाया है कभी किसी ने? नरसिंह भगवान का डिसअपीयरेंस डे कभी मनाया? सुना है? नहीं सुना है ना। ये सोचने का बात है, ये विचार करने का बात है कि भगवान नित्य है। भगवान के, वैसे संस्कृत में जन्म शब्द का ये अर्थ नहीं है पैदा होना, बार नहीं है इसका अर्थ संस्कृत में। जन्म का अर्थ है जो पहले था, नहीं दिखने में आ रहा था, वो अब दिखने में आया। जैसे मां के गर्भ में बच्चा है, बच्चा तो है, सबको मालूम है ना कि 9 महीने पहले पता होता है कि गर्भ है, लेकिन जिस दिन प्रकट होता है हम कहते हैं इसका जन्मदिन ये है, लेकिन बच्चा तो पहले था कि नहीं था। बच्चा तो सबको मालूम है कि ये गर्भवती है, इसका बच्चा होने वाला है, शी इज प्रेग्नेंट, इसका मतलब बच्चा है। तो बच्चा जन्मदिन जिस दिन हमको देखने में आता है उसको जन्मदिन कहते हैं, लेकिन बच्चा तो पहले था कि नहीं था, था ना। तो संस्कृत में जन्म का अर्थ है जो पहले था, दिखने में नहीं आ रहा था, वो दिखने में आ गया। जैसे बच्चा पिता के अंदर रहता है, पिता में बच्चा रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन जब प्रकट होता है तो हम कहते हैं इसका जन्मदिन। तो जब साधारण व्यक्ति के जन्म का मतलब है कि जो नहीं दिखता था दिखने में आ गया, ऐसे भगवान जो नहीं दिख रहे हैं हमको, वो जब दिखने में आते हैं तो उसको भगवान का जन्म कहते हैं। वैसे जन्म नहीं, भगवान के इस दुनिया में आने के लिए शब्द है अवतार। अवतार शब्द का अर्थ है नीचे उतर के आना, उतरना। अवतार मतलब उतरना। तो भगवान अपने धाम से, वैसे जहां हम रह रहे हैं ना, इसको भूलोक बोलते हैं, भू, इससे 7 लोक ऊपर, ये बीच में है, 7वां ये है, इससे ऊपर 6 है, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहता है, और हमसे नीचे लोक है 7, अतल, ततल, सूतल, पताल, ये नीचे लोक है। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है ऊपर, उसके बाद एक नदी है, उसका नाम है ब्रजा, ब्रजा नदी, और उस नदी के अंदर कई ब्रह्मांड फुटबॉल की तरह ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। जैसे आपके समंदर में यहां नहाने जाते हैं ना, तो जहां तक आपको नहाना होता है वहां एक रस्सी के अंदर वो पीले पीले गोले बंधे हुए होते हैं ना, है ना, कि यहां से आगे मत जाना, यहां से आगे डीप वाटर है। तो उसके अंदर ऐसे कई ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग देयर, कई ब्रह्मांड उसमें फ्लोट कर रहे हैं। और नदी के दूसरे तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, नदी के इस तरफ मटीरियल वर्ल्ड है, उस तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जगत है, वहां भगवान का अपना धाम है। और जब इस, ये जगत भी भगवान का है, लेकिन ये जगत भौतिक जगत कहलाता है। तो भगवान जब भौतिक जगत में भक्तों के प्रार्थना करने के ऊपर आते हैं तो उसको भगवान का अवतार कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कितने पहले अवतार लेकर आए थे? 5000 और 3100 साल से ऊपर हो गया, 5300 साल, 400 साल हो गए। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा होता है, उसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी, 28th साइकिल ऑफ 4 युग जब आती है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने 4 युगों के साइकिल है? 71। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक साइकिल। ऐसे 71 टाइम जब साइकिल समाप्त होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। तो जब 28 साइकिल का, द्वापर युग का एंड होता है, तब श्री कृष्ण स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। वैसे हर युग में कई भगवान विष्णु के अवतार आते हैं। जो भी अवतार इस धरती के ऊपर आता है वो भगवान विष्णु का अवतार होता है सामान्य रूप से, लेकिन 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में जो अवतारी पुरुष स्वयं उतरता है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण होता है, वो विष्णु का अवतार नहीं है, विष्णु उसमें समाया हुआ है। ये बात शास्त्र को अध्ययन करने से पता लगेगी। शास्त्र को नहीं जानने वाले इसको नहीं जान सकते हैं। अब शास्त्र क्या है? भगवान 5300 साल पहले प्रकट हुए, हमको कैसे पता लगा? कहां से हम ये आपको बता रहे हैं? हम तो थे नहीं उस वक्त। तो ये हम कौन से आधार पे बात कर रहे हैं? ये शास्त्र में वर्णित है। इसलिए गतवत जन्माष्टमी में हम एक प्रश्न पूछा था, आप लोगों से हम पूछते हैं यही प्रश्न। आप लोग मॉरिशस में 3-4 जनरेशन से भारत से आए हुए हो, ये सब लोग मानते हैं? हाँ, आप लोग सब आपके पूर्वज 3-4 जनरेशन पहले भारत से आए थे। आपने देखा था नहीं? तो आप कैसे कहते हो कि भारत से आए? हाँ, आप तो आए नहीं थे, आपके दादा के दादा आए, ग्रैंडफादर के फादर आए, या ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर आए, तो आप कैसे मानते हो? कौन से आधार के ऊपर आप कहते हो कि हम भारत से आए? हाँ, वो इंदिरा गांधी सेंटर के अंदर ब्रिटिश क्लार्क ने आपके जो फोर फादर आए थे उनका नाम लिख रखा है, कौन से गांव से आए थे, कौन आए थे, लिखा हुआ है ना? वो लिखा भी उस ब्रिटिश ने ऐसा नाम लिखा है जो अर्थ का अनर्थ कर दिया है, नाम टेढ़े बना दिए हैं, उसका अर्थ सही नहीं निकलता है। अंग्रेजी में लिखा ना उसको, हिंदी तो नहीं आती थी बेचारे को। लेकिन अभी आप जाके जो वो किताब में लिखा है उसको मानते हो कि ये हमारे पूर्वज थे? मानते हो ना? हाँ जी, वो एक ब्रिटिश क्लार्क ने 200 साल पहले आपके दादा दादे के दादा का नाम लिखा और एक गांव भारत का नाम लिखा, और आप अभी भी कहते हो कि हम वहां से आए हैं और हमारा दादा वहां से आया था। तो एक अंग्रेज क्लार्क के लेखनी के ऊपर आपको विश्वास है कि हमारे पिता दादा यहां से आए थे, और व्यास देव भगवान का अवतार भागवत में भगवान के श्री कृष्ण के अवतार की कथा लिख के गया, उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? हाँ जी, ये हमारा प्रश्न है आपसे। आप तो उस किताब के ऊपर तो विश्वास करते हैं कि हमारे दादाजी आए थे 200 साल पहले कि 150 साल पहले। तो ये व्यास देव ने लिखा है कि बुधवार के दिन रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ, कंस के कारागृह में, मथुरा में। तो ये व्यास देव ने वर्णन किया है, जो भगवान का अवतार है, जो साधारण व्यक्ति नहीं है, जो गलती नहीं कर सकता, जिसके लिए भागवत में लिखा है कि वो जो देखता है वो लिखता है और वो गलती नहीं कर सकता है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण जब यहां प्रकट हुए थे तब क्या वातावरण था और कैसे भगवान प्रकट हुए थे, ये थोड़ा श्रवण करेंगे। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। और दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि भगवान केवल भारत में ही अवतार क्यों लेता है और जगह क्यों नहीं लेता। जितने भगवान के अवतार हुए हैं भारतवर्ष में हुए हैं तो सब जगह क्यों नहीं होते, ये दूसरा प्रश्न लोग पूछते हैं। इसका उत्तर सीधा ये है भाई, ये सोलेक में आज इस घर में मैं पहली बार आया हूं, पहले क्यों नहीं आया, ये मेरा प्रश्न है। पहले कभी नहीं आया, मैं तो 6 साल से ज्यादा समय से मैं मॉरिशस आ रहा हूं, साल में 2-3 बार आ रहा हूं, लेकिन यहां पहले कभी क्यों नहीं आया। उत्तर क्या है, पहले किसी ने बुलाया नहीं, अभी बुलाया तो आया। तो भारत में भगवान के भक्त भगवान को बुलाते हैं इसलिए आ जाते हैं भगवान, यहां से कोई बुलाता नहीं है, क्या करें भाई, जब किसी को बुलाएंगे तब आएगा ना। तो इसलिए भागवत में व्यास देव ने लिखा है ये भूदेवी पृथ्वी जो भगवान की पत्नी है इसके 3 रूप हैं। एक रूप तो वो है जो आपको दिखता है, पहाड़ है, समुन्द्र है, खेत है, ये पृथ्वी हमको दिखती है, ये पृथ्वी का भौतिक रूप है। पृथ्वी का देवी के रूप में पृथ्वी अपने आप को गाय के रूप में परिवर्तित करती है। आदि देविक रूप में पृथ्वी गाय है और गाय सहनशीलता और सबके पालन पोषण का सिंबल है। तो पृथ्वी सबको धारण करती है, सबका पालन करती है और बहुत सहनशील है। और तीसरा रूप पृथ्वी का आध्यात्मिक रूप है। स्पिरिचुअल फॉर्म में पृथ्वी भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है। भूदेवी और श्रीदेवी, श्रीदेवी लक्ष्मी है और भूदेवी पृथ्वी है, ये भगवान विष्णु की पत्नी है। तो जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, असुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं, तो पृथ्वी देवी का रूप धारण करके गौ के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती है। क्योंकि इस भौतिक जगत को क्रिएट करना ब्रह्मा जी की सेवा है। ब्रह्मा जी पृथ्वी का पुत्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का बेटा है और पृथ्वी विष्णु पत्नी है, तो अपने पुत्र के पास जाती है और कहती है अब भगवान विष्णु को प्रार्थना करने चलो कि मेरे ऊपर अधर्म बढ़ गया है और वो आके धर्म की स्थापना करे। तब ब्रह्मा जी शंकर जी को साथ लेते हैं, कैलाश जाते हैं, शंकर जी को साथ लेते हैं, अन्य देवताओं को साथ लेते हैं, नारद आदि ऋषियों को साथ लेते हैं और ये सारे सब मिलकर खीर सागर के किनारे के ऊपर जाकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये हमने कभी कोई काम गवर्नमेंट से लेना होता है तो 5-10-20 बड़े आदमी इकट्ठे होके जाते हैं और तब उसकी बात कोई सुनता है, अकेला जाता है तो नहीं सुनता है। तो एक डेलीगेट बना के और सारे वहां जाके प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कौन करता है, ब्रह्मा जी करता है, उन सबका लीडर ब्रह्मा है। और उस प्रार्थना के उत्तर में ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट होके उसको मार्गदर्शन करते हैं। और इस बार 5,300 साल पहले जब पृथ्वी ब्रह्मा जी के संग शंकर आदि को लेकर नारद जी के साथ खीर सागर के तट के ऊपर प्रार्थना करने गई तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि पृथ्वी के संकट और कष्ट से पहले ही मैं परिचित हूं। भगवान को पता नहीं है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, भगवान तो कण कण में समाये हुए हैं, हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में बस रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने नियम बना रखा है, जब तक कोई प्रार्थना नहीं करेगा तब तक हर्ष वो बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। वो कैसे रह रहे हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं वो कैसे रह रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपदृष्टा मतलब मैं ऊपर से देख रहा हूं आप क्या कर रहे हो, मैं रोकता नहीं हूं आपको, मैं देख रहा हूं, लेकिन कोई अगर मुझे प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में जानने की आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न है भाई, क्यों हम किसी के विषय में जाने। तो भगवद गीता का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, चौथे अध्याय भगवद गीता में, आप लोग उसका उच्चारण कीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सुअर्जुन। ये सबसे मुख्य श्लोक है भगवद गीता का, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स ऑफ भगवद गीता। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को दिव्य जान लेता है तत्व रूप से, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा बीमारी संकट सबसे मुक्त हो जाता है, केवल भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने के लिए। तो भगवान का जन्म दिव्य कैसे है ये जानना हर सभ्य मानव के लिए अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जो अपने आप को मानव कहलाता है और जो सभ्य है, सभ्य मानव की परिभाषा क्या है, जो आर्य है, जो वेदों के विचारों को अपने जीवन में उतारता है और वैदिक दृष्टि से अपने जीवन को चलाता है वो आर्य है। जो ऐसे ही अपने मनमानी जीवन में जी रहा है खा पी के, उसको पशु कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना, प्रभुपाद जी कभी कहते डीलेक्स एडिक्शन ऑफ एनिमल्स। आजकल के मॉडर्न ह्यूमन बींग जो है सोफिस्टिकेटेड डीलेक्स एडिशन ऑफ ये एनिमल्स, वो थोड़े से कभी व्यंग में प्रभुपाद का एनिमल्स आर वॉकिंग ऑन फोर लेग्स बट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज रनिंग ऑन फोर व्हील्स बट दे आर नॉट एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ दे आर नॉट बेटर देन एनिमल्स। वो पशु से ऊपर उनका स्तर नहीं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर मानव जन्म में भगवत प्राप्ति का साधन नहीं पूछा, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानने का प्रयास किया, केवल खाया पिया और मर गए संसार से, तो पशु के समान जीवन है। तो हर सभ्य व्यक्ति को भगवान के जन्म और लीलाओं की दिव्यता के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। किससे जिज्ञासा करनी चाहिए, इसी अध्याय चौथे में उसके लिए भी भगवान ने नियम बताया, तद विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शनः। जिसको ये जिज्ञासा हो कि भगवान का जन्म और लीला कैसे दिव्य है, उसको तत्वदर्शी किसी गुरु के चरण में जाकर बैठकर प्रश्न पूछना चाहिए, और जो गुरुजन उत्तर दें उसको से जीवन में सेवन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, तब उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो पशु की तरह खा पी के मर के इस दुनिया से चले जाएंगे, उनका नाम भी कोई नहीं जानेगा। कहां गए फ्रेंच जो मॉरिशस का कहा था, डच कहां मर गए जिन्होंने कहा था हमारा मॉरिशस है, मर गए कोई नाम भी नहीं जानता है, ये फ्रेंकोस यह मॉरिशस हमारा है, मर गए कोई नाम भी नहीं जानता है, ये ब्रिटिश आई कई साल कहा कि मॉरिशस हमारा है, कहां चले गए। जब राजा महाराजा नहीं रहे तो आम आदमी की क्या वक्त वैल्यू क्या है। अगर आध्यात्मिक जीवन में मानव जीवन में आध्यात्मिकता की जिज्ञासा नहीं है तो व्यर्थ का जीवन है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा विचार करके देखें कि आपके बड़े बुजुर्ग आए थे कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने घर बाद में बनाए और मंदिर पहले बनाए आइलैंड के ऊपर। अपने झोपड़ियों में रहे लेकिन भगवान के लिए पहले स्थान बनाया, शिवालय मंदिर बनाए। बनाए कि नहीं बनाए? हर एक गांव में एक मंदिर, एक नहीं दो तीन मंदिर है कि नहीं है? क्यों बनाए? मेहनत की, मजूरी की, खेतों में रात को दिन को बरसात में घाम में खड़े रहे लेकिन भगवान के मंदिर बनाए, घर बाद में बनाए क्यों? उनके पास संस्कार था, संस्कृति थी, और पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण ने हमारी संस्कृति हमसे छीन ली है। अब हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए, उनके पीछे चलते हुए अपने रीति रिवाज को भूलते जाते हैं, अपने आध्यात्मिक जो विरासत है, जो हेरिटेज है, उसको भूलते जाते हैं। आध्यात्मिक हेरिटेज हमसे भूलती जा रही है। कितने लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है? मैं पूछता हूँ, आइलैंड आप में जो कम से कम भारत मूल के जो लोग यहाँ 700,000 से ऊपर होंगे, 800,000 है, कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है? कितने लोगों ने भागवत पढ़ी है? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और भारत में आज से 50 साल पहले हर एक व्यक्ति ये शास्त्र सुबह रोज घर में पढ़ा करता था। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, सुबह उठ के रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। और रामायण और भागवत पढ़ने से भगवान के इन जन्म और लीलाओं का श्रवण वर्णन करते थे, दिन सुख से गुजरता था, कुछ भी नहीं था तो भी सुखी थे। और सुबह अखबार पढ़ के दूसरे के कत्ल की खबर सुन के, इसका मर्डर हो गया, उधर चोरी हो गई, उधर एक्सीडेंट हो गया, बस सुबह से परेशान होके दुनिया में इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई सुखी नहीं है। सुविधाएं ज्यादा है, घर बड़े हैं, गाड़ियां बड़ी हैं, लेकिन सुख पैसे का भी नहीं है। रात को चैन की नींद भी लोगों को नहीं, कुछ भी नहीं था हमारे बुजुर्गों के पास, लेकिन बड़े सुखी थे। क्यों? उनके साथ भगवान था। असली धन तो भगवान है, जिसको भगवान का जिसके साथ संग है वो सुखी है, जो भगवान को छोड़ के पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी वो दुखी। व्हाट इज द गेन इफ यू गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज योर सोल? व्हाट इज द गेन? अपने आप को गंवा दो और दुनिया मिल जाए तो क्या फायदा हुआ? आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है वो आदमी असुरी प्रवृत्ति का है, नास्तिक विचार का है, जिसको आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है। हम हर एक हमसे दो चीजों के बने हुए हैं। ये शरीर भौतिक है, प्रकृति ने दिया है, लेकिन ये शरीर चलता तब है जब इसके अंदर आत्मा होती है, और आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मेरा अंश है, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं ये आत्मा मेरा अंश है, ये शरीर प्रकृति ने दिया है। इस शरीर के लिए तो बहुत कुछ हम करते हैं, लेकिन आत्मा जो हमारा अपना अंदर में पहचान है, उसकी जानकारी भी हमको नहीं है। जब तक जीवन में ये संतुलन, ये बैलेंस नहीं होगा, आत्मा की जानकारी और भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे, केवल भौतिक शरीर के ही पीछे पड़े रहेंगे, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि हम शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो गाड़ी है। आप गाड़ी को तो रोज चमका दो लेकिन खुद एक दिन रोटी भी नहीं खाओ एक महीना, तो गाड़ी किसी काम की है क्या आपके? शरीर तो गाड़ी है, ये तो मोटर है, यंत्र रूढ़ानी मायया, इसको यंत्र बोला है, मशीन बोला है भगवद गीता में। मशीन को ठीक रखते हो लेकिन जो मशीन का मालिक है उसके बारे में जानकारी भी नहीं है तो बुद्धिमानी नहीं है। जीवन को बैलेंस रखना है तो दोनों को जानना जरूरी है, और आत्मा की जिज्ञासा और भगवान के बारे में जानना ये केवल मानव में संभव है। ये मानव मंदिर में इंसान जाता है, कुत्ता बिना गधा नहीं जाता। गीता भागवत रामायण मानव पढ़ता है, पशु नहीं पढ़ते। तो हमारे को प्रायः जन्म से आदमी पशु के स्तर पे होता है। क्या करता है? कुछ भी देके पकड़ के मुंह में डालता है, उसके अलावा कुछ नहीं उसको आता है, जो भी ऐसे करके मुंह में डालेगा। जब शिक्षा मिलती है, पढ़ता है समाज में, तब उसमें शेयर करना आता है कि नहीं मैं अकेला नहीं, दूसरे भी हैं दुनिया में। आस्ते आस्ते उसमें कुछ संस्कार आते हैं। संस्कारात भवते द्वेजा, जन्म जायते शूद्र। जन्म से सब तुच्छ हैं, पशु के सर के ऊपर हैं, कुछ भी पता नहीं है। जब संस्कार आते हैं, जब शिक्षा मिलती है, जब गुरुजनों के शरण में बैठ के शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तब वो पवित्र स्थल के ऊपर पहुंचते हैं, तब अपनी आध्यात्मिक जीवन को वो शुरू करते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन को जानने के लिए शास्त्र के शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। स्कूल में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो ABCD पढ़ लेते हैं, लेकिन शास्त्र का ABCD भी नहीं आता है। और ये सारी पढ़ाई यहीं रह जाएगी, ये शरीर घर मकान दुकान सब यहीं रह जाएगा। एक राजा था, उसकी चार रानियां थी। राजा की पहली रानी का नाम था काया, और उससे राजा इतना प्रेम करता था, उसको कभी छोड़ता नहीं था, हमेशा अपने साथ रखता था, कहीं भी जाता था उससे अलग नहीं होता था। दूसरी महाराज की रानी का नाम कंचन था, उसको रोज राजा दर्शन करता था, उसको तो किसी को देखने भी नहीं देता था, उसको संभाल के रखता था, रोज दर्शन करता था। और तीसरी राजा की रानी थी कामिनी, उसके पास आया जाया करता था, उसको खुश रखने का प्रयास करता था। चौथी राजा की रानी थी, उसका नाम करुणा था, उसके पास राजा कभी नहीं गया, कभी उससे बात तक नहीं की, उस रानी को कभी पूछा तक नहीं। समय के साथ राजा कामनी के साथ जगह जगह घूमा फिरा, आनंद लिया, कंचन को प्रेम से पाला पोषा, उसका देखभाल किया, प्रेम किया उससे। कामनी के साथ भी घूमे फिरे, लेकिन करुणा से कभी बातचीत भी नहीं की। समय के साथ राजा बूढ़ा हो गया, मृत्यु गर्दन के ऊपर आके खड़ी हो गई। चारों रानियां पास में रो रही थी, तब राजा ने आंख खोल के कहा, रानियों पता नहीं अब मैं कौन से रास्ते कहां जाने वाला हूं, मुझे भय लग रहा है, मैं डर रहा हूं, आई एम अफ्रेड, आई एम गोइंग समवेयर, आई डोंट नो। काया प्लीज कैन यू अकंपनी मी, मेरे साथ चलो, मैं अकेला हूं। काया कहती है, महाराज मैं आपके साथ नहीं जा सकती। महाराज कहता, मैंने कभी आपको छोड़ा नहीं, जहां भी मैं गया आपको साथ ले गया, आप मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती। तब कंचन की ओर देखा, कहा, कंचन आप तो मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो, मैं अकेला कैसे जाऊं। कंचन ने कहा, महाराज आपके जाते मैं दूसरा विवाह कर लूं। महाराज दुखी होकर तीसरी की ओर देखा, कामिनी तुमको तो मैं हमेशा खुश रखा, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना। कामिनी का, महाराज शमशान तक चलूंगी और उसके बाद मैं को बहुत काम है, कहीं कहीं जाना है, मैं नहीं जा सकती। अब राजा कहता है, काया को अपने साथ रखा हमेशा, कंचन को बड़ी सबसे छुपा के प्रेम से रोज जिसके साथ रहा, कामिनी को खुश रखा, उनमें से एक भी मेरा साथ नहीं दे रही है। कौन से मुंह लेकर मैं करुणा को कहूं कि तुम मेरे साथ चलो, उसको तो मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि तुम हो कौन और कहां रहती हो और क्या खाती हो। और राजा ऐसे चिंता करके रो रहा था, विलाप कर रहा था, इतनी देर में कामनी आई और इतनी देर में करुणा आई, और करुणा ने कहा, महाराज सब रानियों से आपने जो प्रश्न पूछा था मुझसे नहीं पूछोगे। महाराज को तो शर्म आ रही थी, आंखें नीचे करके रो रहे थे। बोला, आप महाराज नहीं पूछिए, मैं ही उत्तर दे देती हूं, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और तब महाराज आंखें खोल के देखते कहते, करुणा मैंने कभी तुमको नहीं पूछा, लेकिन तुम आज मेरा साथ दे रही हो, मैं तुम्हारा शरण में हूं, अब तुम मेरे को साथ दो। राजा तो चल बसा, लेकिन वो राजा और उस राजा की ये कहानी आप सबकी और मेरी कहानी, हम में से सबकी चार पत्नियां हैं। ये शरीर काया है, इसको इतना प्रेम करते हैं, सजाते हैं, रोज साथ ले जाते हैं। शरीर को छोड़ के तो कोई कहीं भी नहीं जा सकता, और मरने के समय हम चाहते हैं शरीर साथ चले, लेकिन शरीर आज तक किसी का साथ गया नहीं। ये काया हमारी पहली आसक्ति है संसार में, इस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, और ये शरीर कभी हमारे साथ नहीं चलता। कंचन धन है, जिसको छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, उससे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन समय मरने के उसको बोलेंगे तुम सांस चलोगे, तब वो कहेगी तुम्हारे जाते ही दूसरे का हो जाऊंगा। धन तो दूसरे का हो जाएगा, तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा, पता नहीं किसके पास चला जाएगा, बेटे के पास जाएगा कि चोर के पास जाएगा, कुछ पता नहीं है। ये मेरी आपकी कहानी है। धन को हम बड़ा शौक से संभाल के रखते हैं, बड़ी मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन साथ जाने वाला है। और कामिनी रिश्तेदार है, शादी में आते हैं, हम भी जाते हैं, कभी खिलाते हैं, कभी खाते हैं, लेकिन मरने के समय केवल शमशान तक जाते हैं, मसान में चलते हैं, ग्रेवयार्ड के बाद उनको बहुत काम है, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। करुणा परमात्मा है, उसको हम सारी जिंदगी याद नहीं करते। हम तो इतने दुनिया की भूल भलाइयों में, इतने नेरो पाथ में अपने आप को उलझा के रखते हैं कि भगवान के बारे में सोचने समझने का हमारे पास समय भी नहीं होता है। मरते समय परमात्मा कहता है अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ, तो जहां भी जाएगा तेरे कर्म से, मैं तेरा साथ कभी छोड़ने वाला नहीं। तो जो भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, उसको हम याद नहीं करते हैं, और ये दुनिया जिसको हम अपना मान के बैठे हैं, ये हमारे साथ कभी जाने वाली नहीं है। ये कथा आपकी और मेरी है, बुद्धिमानी से समझ लीजिए कि जिसने भगवान के बारे में जानने का अभ्यास नहीं किया, प्रयास नहीं किया, वो इस जीवन में बहुत दुखी होके जाएगा, क्योंकि कुछ भी दुनिया वाला जिसके लिए वो मर मिटा, उसके साथ जाने वाला नहीं। वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, मरने के समय अपने मंत्री को कहने लगा, मैं पूरे वर्ल्ड का कॉन्करर हूं, दुनिया पूरी के ऊपर मैंने विजय प्राप्त की है, मैं आधी दुनिया तुमको देता हूं, तुम जीवन का एक महीना मेरे को दे दो, मैं वापस अपने घर इजिप्ट जाना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, महाराज अपने जीवन का एक महीना मैं नहीं दे सकता, कैसे दूं? तो अलेक्जेंडर कहने लगा सिकंदर के, पूरा राज तुमको देता हूं, एक दिन जीवन का दे दे, मैं चिट्ठी लिखूं मेरी मां को। मिनिस्टर ने कहा, असंभव, इट्स नॉट पॉसिबल। तब सिकंदर ने ये गोल्डन वर्ड कहे थे कि सारी जिंदगी दांव पे लगाकर मैंने विश्व को विजय किया, आई यूज माई होल लाइफ टू कॉन्कर द वर्ल्ड, आज मैं उस पूरे वर्ल्ड को एक्सचेंज में देना चाहता हूं, एक दिन जिंदगी का नहीं मिल रहा है। जिंदगी भर जिस दुनिया को मैंने अपना बनाया, आज वो दुनिया देता हूं, एक दिन नहीं मिलता। मैं जिंदगी दे दी, आज एक दिन उसके बदले में नहीं मिलता। आई एम नॉट एबल टू गेट वन डे इन एक्सचेंज ऑफ द होल वर्ल्ड। एंड देन सिकंदर सेड दीज गोल्डन वर्ड्स कि मुझे जब कब्र में उतारो, ग्रेव में मुझे जब डालो, तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना और लिखना कि वर्ल्ड कॉन्करर अलेक्जेंडर लेफ्ट द वर्ल्ड एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ इस दुनिया से चला गया। वर्ल्ड नॉट वन अलेक्जेंडर, ऐसे लाखों राजा इस दुनिया से खाली हाथ गए, उनका नाम भी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन एक छोटा 5 वर्ष का ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने गया, तो आज लाखों 100,000 मिलियंस ईयर से द्रु का गुण गाते कहते हैं कि भगवान का भक्त हुआ है। एक प्रहलाद ने संकट को सहा, लेकिन भगवान जिसके लिए अवतार लेकर आए उस भक्त के नाम को दुनिया सब जानती है। तो राजा महाराजा मर जाते हैं, कोई नहीं जानता है, लेकिन एक भक्त हमेशा अमर हो जाता है। और भक्त अमर कब होता है? जब भगवान के बारे में जानने का इच्छा, जिज्ञासा, प्रयास करता है तब। आप सब लोग भक्त हैं और ये श्रावण का महीना बहुत बहुत, सभी महीने भगवान के बहुत सुंदर है, अति हर महीने में बहुत से उत्सव हैं, लेकिन विशेष रूप से ये श्रावण का महीना जो अब चल रहा है, ये बड़ा उत्सव का महीना होता है, ये बड़ी हरियाली का महीना होता है। भारत में इस वक्त में चारों ओर से बरसात की मौसम में हरियाली होती है, और कल हरियाली तीज है, तीसरा दिन हरियाली का होता है। कल के दिन वृंदावन के अंदर गाड़ी क्या, रिक्शा क्या, आदमी पैदल भी नहीं चल पाएगा, नहीं तो भी मिलियन से ज्यादा लोग जो है पैदल दर्शन करके और झूले को देखने के लिए पूरे वृंदावन में, और ग्रीन बहुत सुंदर भगवान को तीज का और पुराने जमाने में भारत की संस्कृति ये थी कि नवविवाहित लड़कियां जो होती थी वो अपने ससुराल से इस दिन घर पे बुलाई जाती थी, अपने माता पिता के घर में आती थी। तो ये उत्सव बहुत बड़ा पुराना उत्सव वो कल से शुरू होने जा रहा है, और उसमें झूलन भगवान राधा कृष्ण को झूले में झुलाया जाएगा पूर्णिमा तक, बलराम जयंती रक्षाबंधन तक ये झूलन यात्रा चलती है पूरे भारत के प्राचीन इतिहास में, और लड़कियां अपने माँ बाप के घर आती हैं, और राजा रानी जावत से उसका उनके भाई लेने जाते हैं तब वो घर पे आती। तो ये उत्सव का महीना है, और इस उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव 2 तारीख को आएगा रक्षाबंधन। रक्षा का अर्थ क्या है? रक्षा का अर्थ क्या है? प्रोटेक्शन। और बंधन का अर्थ क्या है? भाई कोई हमारे को वचन दे के वो हमारी रक्षा करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ रक्षा बंधन। वैदिक काल में रक्षा बंधन जो उत्सव था, उस उत्सव में साधु ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण से रक्षा को अभिमंत्रित करके भक्तों और राजाओं महाराजाओं की रक्षा के लिए इस दिन जाके बांधते थे। ये पुराना ये इस तरीके से दिन मनाया जाता था। फिर एक समय राजस्थान में ऐसा आया कि किसी राज में राजा नहीं रहा, केवल रानी थी, और किसी और ने आक्रमण कर दिया तो उसको सहायता लेनी पड़ी पड़ोस के राज से, तो उस राजा को उसने भाई बनाया, और जब भाई बनाया तो उसको राखी बांध के उसको भाई बनाया। तब से भाई को बहन राखी बांधती है कि भाई हमारी रक्षा करेगा, वो उसके राज की रक्षा करने के लिए वो राजा फिर आया और उसकी रक्षा की, तब से भाई को बहन रक्षा बांधती है। ये बहुत रिसेंट है, लेकिन ओरिजिनली रक्षा बंधन ब्राह्मण लोग, अब हमें याद है 50 साल पहले हम छोटे बच्चे थे, हमारा अपना घर में मंदिर था राधा कृष्ण का, वो माता जी 50-100 रक्षा बना के देती थी, भगवान के चरणों में रखते थे, फिर शहर में हर एक दुकान के ऊपर जो हमारे यजमान थे उनको जाके रक्षा बांध के तिलक लगा के स्वस्ती वाचन करते थे, और वो लोग उसके बदले में कुछ दक्षिणा दान ब्राह्मणों को दिया करते थे। तो ये पुराना इस तरीके से त्यौहार मनाया जाता था, और अभी भी कुछ भक्त हैं अपने भाव से भगवान को रक्षा अर्पण करते हैं, फिर भगवान की रक्षा लेके बांधते हैं। लेकिन रक्षा कौन करेगा हमारी? रक्षा वो करेगा जो बलशाली होगा, इसलिए रक्षा बंधन के दिन भगवान बलराम जी का जन्मदिन है, बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा रक्षा बंधन के दिन पे है, तो रक्षा बलराम करता है। हमारी आध्यात्मिक भक्ति की रक्षा बलराम की शक्ति से होती है, बलराम की शक्ति से गुरु अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। बलराम की, नित्यानंद बलराम लक्ष्मण ये जो हैं, ये बलशाली है, इनकी इनसे रक्षा हमको प्राप्त होती है। तो 2 तारीख को ये उत्सव बलराम पूर्णिमा को आएगा और उससे एक सप्ताह बाद 10 तारीख को जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य का दिन है। हम आपसे कथा बता रहे थे, ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि इन सब देवताओं को कहो कि तुम अपने अंश से जाकर यदुवंश में प्रकट हो जाओ मेरी लीला में सहायता देने के लिए। मैं अपनी श्री के साथ, राधा रानी के साथ वहां प्रकट होने जाऊंगा और आप सबके मंगल और इच्छा पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी ने ये समाचार पृथ्वी और सब देवताओं को दिया और सब देवता वहां से लौटकर वापस अपने अपने स्थान पे गए और धरती वापस पृथ्वी अपने रूप में आके रहने लगी। और उसके बाद भागवत में वर्णन है कि वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। देवक की बेटी देवकी, कंस उसके चाचा का लड़का था, लेकिन कंस उग्रसेन का बेटा असल में नहीं था। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के अंदर काल नेमी असुर ने कंस को स्थापित किया था। कंस काल नेमी नाम का असुर था जो पद्मावती उग्रसेन की पत्नी के उदर में प्रवेश किया था और उग्रसेन के भाई देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। और विदाई के समय भाई की जगह पे कंस ने देवकी के रथ को चलाना शुरू किया। वसुदेव और देवकी नए विवाहित रथ के ऊपर बैठे और रथ मथुरा में चलने लगा वासुदेव के घर की तरफ। देवताओं ने कहा कि भगवान ने अवतार लेने का वचन किया है, लेकिन कंस जैसे असुरी प्रवृत्ति के लोग अगर सेवा करेंगे भक्तों की तो फिर भगवान के आने में देर हो जाएगी, हमारे काम में बहुत लेट हो जाएगी। तब देवताओं ने एक आकाशवाणी की, कहा मूरख कंस, जिसके रथ की बागडोर तुम संभाल के ले जा रहे हो, इस देवकी का 8वां संतान तेरी मृत्यु है। अब कंस जो असुर था, असुर की पहचान क्या है? आपसे मीठा बोलेगा, उसके ऊपर सर के ऊपर सींग नहीं होंगे, ऐसे बड़े बड़े दांत, काला मुंह नहीं होगा, लेकिन जब भी उसकी भोग की इच्छा के ऊपर थोड़ा भी किसी ने उंगली उठाई तो वो मारने के लिए खड़ा हो जाएगा। जिसके भोग इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाली, लोभी को और कामी को रोकते हुए जो क्रोध करता है वो असुर। अब कंस ने उस अपनी बहन को जो अभी विवाहित थी उसके एक हाथ से बालों से पकड़ा, एक हाथ में तलवार लेके मारने को तैयार हो गया। देवकी ने न चिल्लाया न रोया, न कंस को कहा कि भाई मुझे मत मारो, न वसुदेव को कहा, अभी तो विवाह हुआ था, अभी वसुदेव को भी ये नहीं कहा कि पति मेरी रक्षा करो। चुप शांत भगवान के भरोसे खड़ी है। वसुदेव ने कहा मेरा दायित्व है, मेरी पत्नी है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। और राम और भागवत में राम कथा के विषय में एक बहुत अच्छा सूत्र लिखा है। राम जी कहते हैं कि स्त्री को एक बार अगर पाणी ग्रहण हाथ पकड़ लो उसका विवाह में, तो फिर उसकी रक्षा के लिए समुद्र पार जाना पड़े, रावण से लड़ना पड़े, तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार स्त्री को ग्रहण कर लो तो उसकी रक्षा के लिए मर मिटने तक आपको अपना प्रयास करना चाहिए। जब तक जान है तब तक उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वसुदेव ने बुद्धिमानी से चाम दाम दंड भेद राजनीति से कंस को समझाने का प्रयास किया। कंस नहीं समझा, तब वसुदेव सत्यवादी, उसकी जबान के ऊपर सबको विश्वास था, और उस वक्त वसुदेव ने एक वचन दिया कंस को, कहा आपको देवकी से तो भय नहीं है ना, आपको इसके पुत्र से, इसकी संतानों से भय है ना, तो मैं इसके सारे संतान जन्म लेते ही आपको दे दूंगा, जिससे आपको भय है वो नहीं। बहुत बड़ी विलक्षण संस्कृत भाषा है, उसका अर्थ बड़ा अद्भुत है। उसका अर्थ ये है कि इसके सारे तुम्हारे को संतान दूंगा, जिससे भय है, जिससे आपको भय नहीं है वो सब दे दूंगा, लेकिन जिससे भय है वो नहीं दूंगा। यू आर अफ्रेड ऑफ हर ऑफ स्प्रिंग्स, जो बच्चे उसके जन्म लेंगे उससे आपको डर है ना। यू आर अफ्रेड ऑफ दी वन एट वन, बट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ अदर्स, आई विल गिव यू ऑल अदर्स, बाकी सब दे दूंगा, लेकिन जिससे आपको भय है वो नहीं दूंगा। अगर इतना मूर्ख वसुदेव हो कि भगवान घर में आए और उसको कंस के हाथ दे के आए, तो भगवान वसुदेव घर में क्यों जन्म लेंगे भाई? भगवान वसुदेव घर में क्यों आएंगे? कंस ने वसुदेव की बात के ऊपर विश्वास किया, देवकी और वसुदेव अपने घर गए, कंस अपने घर गया। 9 महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, वसुदेव बच्चे को हाथ में उठा के कंस के पास लाए। कंस, ये पहला बच्चा देवकी का मैं आपको दे रहा हूं। कंस ने कहा, इससे मुझे डर तो नहीं है? मुझे तो 8वें से डर था, ले जाओ इसको, इसको क्या करूंगा मैं मार के। नारद जी ने देखा कि कंस इतना दयालु हो गया तो भगवान के आने में देर हो जाएगी, और नारद जी चल के कंस के घर में आए और कंस ने नारद का स्वागत किया। और कंस को नारद कहता है, भोजराज, मैं देवलोक से आ रहा हूँ, सारे देवता यदुवंश में आके अवतार ले रहे हैं और बहुत बड़ा वहाँ कंस्पायरेसी हो रही है और आपको मारने की योजना हो रही है। ये विष्णु बड़ा छल वाला है, आपको मालूम नहीं है कि कहता है 8 पहला भी हो सकता है। अब गिनती करके दिखाओ, कहाँ से, यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ से गिनती करो, ये 8 एक हो गया कि नहीं हो गया, अब तुम देखो, तुम्हारी मर्जी। अब कंस का माथा घूम गया, उसने वसुदेव को कहा, इस बच्चे को इधर लाओ, लाके पत्थर और पत्थर के ऊपर ऐसे मारा और वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और 5 बच्चों को देवकी ने समय के ऊपर जन्म दिया, 6 बच्चे कंस ने ऐसे देवकी के मारे आंखों के आगे, और वो पत्थर के ऊपर बच्चों के खून के निशान मां के सामने 12 महीने देखने को मिलते थे। 7वां बच्चा देवकी के उदर में आया, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में देवी को बुलाया, देवी भद्र तुम एक काम करो, इस वक्त देवकी के उदर में मेरा शेष, जो मेरी सैया है जिसके ऊपर मैं बैठता हूं, जो मेरी सीट है, वो इस वक्त देवकी के उदर में, मैंने उसको विनती किए गया है, वो मेरे लिए जगह बना रहा है, मेरे को वहां जाना है, लेकिन वो है रोहिणी का पुत्र, इसलिए तुम उसको वहां से निकालो और खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित करके आ जाओ। देवी ने कहा, मुश्किल काम है? बोला, नहीं भद्रा, तुम ये काम करो और मैं आशीर्वाद करता हूं तो आप ये निश्चित रूप से सफलता से कर पाओगी। और एक और काम करना है, इस बच्चे को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और क्योंकि आप इसको खींच के ले जाओगी तो इसका नाम संकृष्ण होगा, और क्योंकि ये बहुत बलशाली होगा इसके लिए इसका नाम बलदेव बलभद्र होगा, और ये सबको आनंद देगा इसलिए इसको राम भी कहेंगे। भगवान ने बलराम जी का नामकरण पहले कर दिया, जन्म से पहले, और फिर देवी को कहा, उसके बाद देवी तुम यशोदा के घर में मेरी छोटी बहन के रूप में जन्म लेना, और तुम्हारे ये 2 काम करने के कारण देवी मैं तुम्हारे को वरदान देता हूं, भारतवर्ष में तेरी बहुत पूजा होगी, विंध्याचल पर्वत पे पूजा होगी, अलग अलग स्थानों पे तुम्हारे वैष्णवी देवी के नाम से पूजा होगी। और ये कहकर, और यहां कंस ने कहा कि 7वां गर्भ देवकी का गिर गया, मिसकैरेज हो गया। अरे कंस ने ऐसे किया हुआ, बदनामी कंस के ऊपर आई, लेकिन बच्चा तो चला गया गोकुल में रोहिणी के उदर में। 1 सप्ताह बड़ा है और 1 सप्ताह पहले बलराम जी प्रकट हुए। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं ये 5-7 मिनट कथा सुन लो। भागवत में लिखा है, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर जो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो जो अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, वन हु प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज फ्रॉम फियर, आवेश अंश भागे न अपने सारे अंशों के साथ, जितने पहले अवतार हुए हैं नरसिंह वारा आदि सब अपने अंदर, सारे विष्णु के अवतार जितने पहले हुए हैं, ये 10 अवतार कहते हैं, सबको अपने अंदर समा लिया। आविशेष अंश भागे न मन अनंक दुमदुभि, वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के मन में आए और वसुदेव चमकने लगा। भगवान जब किसी के हृदय में आते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलने लगता है। साधु महात्माओं का आपने चित्र देखा है, उसको चारों पर प्रकाश निकालते हैं, इसका मतलब उसने भगवान का हृदय में दर्शन किया है। ये जन्माष्टमी का अर्थ है। जिस दिन हमारे हृदय में भगवान ऐसे प्रकट होंगे उस दिन हमारी जन्माष्टमी होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के गुरु लिखते हैं कि भक्त के हृदय में जब ऐसे भगवान का प्रकट होगा ना, तब वह समझेगा कि भगवान का जन्म कैसे होता है। तब तक किताबों की लिखी हुई कहानियों से नहीं समझ में आएगा। वसुदेव के हृदय में जो भगवान प्रकट हुआ, वसुदेव ने उसको देखा, वसुदेव ने उस अपने भगवान को अपने मन से देवकी के हृदय में स्थानांतर कर दिया। ही ट्रांसफर्ड द सुप्रीम लॉर्ड फ्रॉम हिज ओन हार्ट इनटू द हार्ट ऑफ देवकी, देवकी के हृदय में स्थापन किया। इसको बोलते हैं दीक्षा, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इनिशिएशन। गुरु अपने हृदय में भगवान को प्रकट करके शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। अब देवकी के, देवकी से प्रकाश निकलने लगा, देवकी चमकने लगी और कंस आके कहता है देवकी इतनी सुंदर तो कभी नहीं लग रही, लगता है कि इसके हृदय में विष्णु आ गया है। लेकिन फिर मन बदल गया, बोला इसको मारूंगा, ये तो स्त्री है, गर्भवती है, मेरी बहन है, मेरी बदनामी होगी, इसलिए इस बच्चे के जन्म तक इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। जिसके हृदय में भगवान आ जाता है ना, कंस जैसा बदमाश भी उसको कुछ नहीं करता, कुछ कर भी नहीं सकता, उसका मन बदल जाता है। कंस का मन बदल गया और देवकी के हृदय से भगवान उनके उदर में आया और ऐसे लगा कि देवकी गर्भवती है। उस वक्त कंस के जेल खाने में ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद, इंद्र आदि सब देवता कंस के कारागृह में आए और देवकी के गर्भ में स्थापित भगवान को प्रार्थना करने लगे। बड़ी सुंदर प्रार्थना 25वें दूसरे अध्याय के 25 श्लोक से लेकर 41 इतने श्लोक तक बहुत सुंदर 18-20 श्लोकों में प्रार्थना की है ब्रह्मा शंकर आदि ने कि भगवान आप इस दुनिया में अवतार लेते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं। आप आ रहे हैं, आपने बड़ी दया की और उसके बाद देवकी और वसुदेव को कहा आप डरो मत, अब आपका पालनहार और रक्षण करने वाला आ रहा है। ये कहकर देवता वापस अपने लोक गए और तब समय हुआ भगवान के प्रकट होने का और तब भगवान वसुदेव और देवकी के सामने चार हाथ शंख चक्र गदा लिए हुए, सर के ऊपर सुंदर मुगट पहना हुआ, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, कौत्सव मणि धारण किया हुआ भगवान सामने प्रकट हुए। वसुदेव अद्भुत बालक को देखा और उसको प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि आप तो सृष्टि के मालिक पालिक हो, आप हमारे यहाँ कृपा करके प्रकट हुए हो। और फिर देवकी ने प्रार्थना भगवान को की और भयभीत हुई कि आपके इस रूप को देखकर कंस का मुझे भय लग रहा है, आप छोटे बच्चे बन जाओ और बच्चे के रूप में मैं आपको कहीं छुपा लूंगी, मैं ऐसे आपको कहाँ छुपाऊं। तब भगवान ने बोलना शुरू किया, कहा कि देखो तुम लोग पहले प्रजापति प्रश्नी और प्रश्नी और सुतपा थे, आपने बड़ी तपस्या की, मेरे को पुत्र रूप में मांगा और मेरे जैसा और कोई नहीं है, इसलिए मैं 3 बार आपका पुत्र बनने का संकल्प किया। पहले आपका प्रश्नी गर्भा पुत्र हुआ, फिर आप कश्यप और आदित्य हुए, तब मैं आपके घर में वामन देव बन के आया, अब देवकी और वसुदेव मैं आपके घर में वसुदेव कृष्ण के रूप में, मैं आपको जानकारी देने के लिए कि आपको मालूम हो कि मैं तीसरी बार तीन बार अपने वचन को पूरा किया है। अब आपको अगर भय लगता है तो पिताजी मुझे यहाँ से ले चलो, नंद गोकुल में यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया है, मुझे वहां छोड़ के उस लड़की को लेकर आए। ये भगवान के जन्म की कथा है। कोई बच्चा चार हाथों में जन्म लेके माँ बाप से बात करता है, कपड़े पहन के कोई जन्म लेता है, कहता है अपने माँ को के घर ले चलो मुझे? नहीं, ये भगवान का जन्म दिव्य है। और फिर वसुदेव कैसे लेके गए, ये कथा तो बहुत लंबी है। मेरे ख्याल में अभी का समय आज का इतना ही है, एक घंटा हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, राम गोपाल जी और प्रीति का, जिन्होंने कृष्ण भगवान के सुंदर कथा के श्रवण के लिए आयोजन किया। अब कीर्तन करेंगे हमारे गुरु शक्ति जी, और यहाँ आप लोग एक एक करके भगवान के झूले को थोड़ा झूलाते जाइए जल्दी जल्दी, और कीर्तन में भाग लीजिए। आप ये पुण्य आज भगवान को, जो दुनिया सारी को चला रहा है, आज छोटा बना है, आपको सेवा का अवसर दे रहे, वहां से झूला झलाइए। तब तक यहाँ आरती होगी, कीर्तन होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, किसी कोई जिज्ञासा है? नहीं तो कथाएं तो रोज होती रहेगी, कहीं ना कहीं सुनते हैं। हरे कृष्ण।